नमस्कार भारत, 4 जुलाई गुरुवार, मैं हूं आदर्श राठौर। हांगकांग में प्रदर्शनों को लेकर राजनयिक तनाव बढ़ने के बाद चीन ने ब्रिटेन को दी दखल न देने की चेतावनी।
The UK government chose to stand on the wrong side. It has made...
बिहार के बाद अब पूर्वोत्तर राज्य असम में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का प्रकोप, अब तक कम से कम 36 की मौत। जानेंगे राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहने पर अब क्या हो सकता है पार्टी का अगला कदम।
कांग्रेस पार्टी है, उसके पास अब कोई और उपाय नहीं है कि उसके अलावा कि नया नेता चुने, किस प्रक्रिया से चुनते हैं वो आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा।
होगा दुनिया जहान भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। संयुक्त राष्ट्र ने लीबिया की राजधानी त्रिपोली के नज़दीक एक हिरासत केंद्र पर हुए हवाई हमले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। इस हवाई हमले में कम से कम 40 लोग मारे गए हैं और 130 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेज ने इस हमले के बाद गुस्से का इजहार किया है। लीबिया में संयुक्त राष्ट्र के दूत ने कहा है कि ये हमला युद्ध अपराध हो सकता है। लीबिया की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने जनरल खलीफा हफ्तार की सेनाओं पर हमले के आरोप लगाए हैं। सुरक्षा परिषद ने लीबिया के मुद्दे पर आपात बैठक की है, लेकिन कोई साझा बयान जारी नहीं हो सका है। हवाई हमले के बाद से त्रिपोली के एकमात्र हवाई अड्डे से उड़ानें रोक दी गई हैं। न्यूयॉर्क में एक प्रेस वार्ता में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता इस्तीफान दुरारिक ने कहा,
He condemns this horrendous incident in the strongest terms.
महासचिव ने इस भयावह घटना की सख्त शब्दों में आलोचना की है और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भेजी है। उन्होंने घायल के शीघ्र ठीक होने की कामना की है। महासचिव ने इस हमले की स्वतंत्र जांच की मांग भी की है ताकि जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाई जा सके। उत्तर कोरिया का कहना है कि अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के बातचीत का प्रस्ताव देने के बावजूद उत्तर कोरिया के खिलाफ अपना रवैया बनाए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया के दूत ने कहा है कि अमेरिका कोरियाई प्रायद्वीप के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करना चाहता है। उन्होंने सभी देशों से सतर्क रहने के लिए भी कहा है। अमेरिका के ओहायो प्रांत में 6 सप्ताह से अधिक के गर्भ के गर्भपात को प्रतिबंधित करने वाले कानून पर एक फेडरल जज ने अस्थायी रोक लगा दी है। सिनसिनाटी के डिस्ट्रिक्ट जज ने इस कानून के खिलाफ प्राथमिक आदेश दिया है। ये कानून भ्रूण की धड़कन पैदा होने के बाद गर्भपात प्रतिबंधित करता है। ये कानून अगर लागू होता तो देश में गर्भपात से जुड़ा सबसे सख्त कानून होता। इसके तहत बलात्कार की पीड़िताओं के गर्भपात पर भी रोक होती। अमेरिका के कई अन्य प्रांतों में भी ऐसे ही सख्त गर्भपात विरोधी कानून पारित किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो साल 2020 में होने वाली अमेरिकी जनगणना में नागरिकता से जुड़ा विवादित प्रश्न शामिल करेंगे। ट्रंप के प्रशासन ने ही मंगलवार को घोषणा की थी कि ये प्रश्न जनगणना से हटा लिया गया है। ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा कि वाणिज्य विभाग का बयान झूठा और फेक न्यूज़ था। बीते सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के इस सवाल को शामिल करने के प्रयास को रोक दिया था। वहीं अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस ने कहा है कि प्रश्नावली फॉर्म बिना इस सवाल के ही प्रिंट किया जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि नागरिकता से जुड़ा सवाल रिपब्लिकन नेताओं की प्रवासियों को डराने वाले चुनावी क्षेत्रों के समीकरण को प्रभावित करने की एक चाल है। होंडुरास के अधिकारियों के मुताबिक मछली पकड़ने गई एक नौका के डूबने से कम 26 लोग मारे गए हैं। 47 लोगों को बचा लिया गया है। मारे गए लोग मछुआरे बताए जा रहे हैं। बुधवार को एक और नाव डूब गई थी जिसमें सवार 40 लोगों को बचा लिया गया है। अभी हादसों की वजह का पता नहीं चल सका है। विमान निर्माता कंपनी बोइंग इंडोनेशिया और इथोपिया में हुए बोइंग 737 मैक्स विमान हादसों के पीड़ितों के परिवारों के लिए $10 करोड़ दे रही है। ये दोनों ही विमान तकनीकी खामी की वजह से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही क्रैश हो गए थे। दोनों हादसों में 346 लोग मारे गए थे। ये पैसा अगले कुछ सालों में परिवारों के लिए काम कर रही संस्थाओं को दिया जाएगा और ये कंपनी के खिलाफ किए गए मुकदमों से अलग है। इन हादसों के बाद से ही 737 मैक्स विमानों की उड़ानों पर रोक है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। कार्यक्रम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय समाचार से। हांगकांग में हुए बड़े स्तर पर प्रदर्शनों को लेकर अब चीन और ब्रिटेन के बीच तनातनी पैदा हो गई है। ब्रितानी विदेश मंत्री की ओर से हांगकांग में हुए प्रदर्शनों का समर्थन करने पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई है। ज्यादा जानकारी के लिए बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा से।
चीन ने ब्रिटेन को अपने आंतरिक मामलों में दखल न देने की चेतावनी दी है। हांगकांग में हुए व्यापक प्रदर्शनों के बाद दोनों देशों में राजनयिक तनाव बढ़ गया है। ब्रिटेन में चीन के राजदूत ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों के समर्थन में दिए गए ब्रितानी विदेश मंत्री येरेमी हंट और अन्य लोगों के बयानों से रिश्ते को नुकसान पहुंचा है। ब्रिटेन में चीन के राजदूत ली शाओमिंग ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा,
chose to stand on the wrong side.
वो अभी भी हांगकांग को ब्रितानी शासन के अंदर मानते हैं। वो भूल गए हैं कि हांगकांग अब अपनी मातृभूमि के बाहों में वापस आ गया है। इसलिए मैं उनसे कहूंगा कि हांगकांग से अपने हाथ दूर रखें और हांगकांग में जो कुछ हासिल कर लिया गया है उसके प्रति सम्मान दिखाएं। राजदूत की इस टिप्पणी के बाद ब्रितानी विदेश मंत्रालय ने उन्हें तलब कर लिया। ब्रितानी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता के मुताबिक चीनी राजदूत से कहा गया है कि उनका बयान गलत और अस्वीकार्य है। इससे पहले ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने एक बयान में कहा कि उन्होंने चीनी नेताओं के सामने ये मुद्दा रखा है। हांगकांग में विवादित प्रत्यर्पण कानून के खिलाफ हाल के दिनों में व्यापक प्रदर्शन हुए हैं जिनमें लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं। सोमवार को प्रदर्शनकारियों के एक दल ने संसद की इमारत को कई घंटों तक कब्जे में रखा और इमारत पर ब्रितानी शासनकाल के दौरान का झंडा फहरा दिया। इस प्रस्तावित विधेयक के आलोचकों का कहना है कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को हांगकांग से चीन भेजने के लिए किया जा सकता है।
चीन और ब्रिटेन के बीच बढ़े राजनयिक तनाव पर जानकारी दे रहे थे बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद। बात करते हैं भारत की। बिहार के बाद अब पूर्वोत्तर राज्य असम में जापानी बुखार यानी कि जैपनीज इंसेफ्लाइटिस से अब तक कम से कम 36 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। बुधवार को दरंग जिले में जापानी इंसेफ्लाइटिस से 3 और लोगों की मौत हो गई। इस बीच जापानी बुखार की रोकथाम के लिए कदम उठा रहे अधिकारियों को लगता है कि जुलाई और अगस्त के महीने में यहां जापानी बुखार के प्रकोप को कम करना काफी चुनौती भरा काम होगा। सुनिए हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में राज्य कार्यक्रम अधिकारी उमेश फांगसो ने इस साल 30 जून तक असम में जापानी इंसेफ्लाइटिस से 22 लोगों की मौत की पुष्टि की थी। फांगसो ने प्रदेश में जापानी इंसेफ्लाइटिस के कुल 69 मामले दर्ज करने की बात भी कही थी, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 3 जुलाई अर्थात बुधवार तक असम में जापानी इंसेफ्लाइटिस के 140 मामले दर्ज किए गए हैं और कुल 36 लोगों की मौत हो गई है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अभी मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि बीते सोमवार को करीमगंज जिले में जापानी बुखार के कारण एक स्कूल शिक्षक की मौत हो गई थी। वहीं बुधवार को दरंग जिले में 3 लोगों की मौत का एक नया मामला सामने आया है। सरकारी अधिकारी प्रदेश में हर साल जापानी इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत के कई कारणों में से लोगों में जागरूकता की कमी को प्रमुख बताते हैं। जोरहाट मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर स्वरूप बोर कोटोकी ने बीबीसी से कहा,
ये जो मानसून का जो समय है, दिस इज द मोस्ट ड्रेडेड पार्ट फॉर जी ड्रेडेड है। यहाँ पे मॉस्किटो ब्रीडिंग भी बहुत ज्यादा होता है, ये सब बाकी फैक्टर्स का भी थोड़ा मैंने जेई प्रिवेलेंस बहुत ज्यादा हो जाता है इस समय में। आई थिंक अवेयरनेस फैक्टर इसको ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है।
दरअसल बिहार में चमकी बुखार के कारण सैकड़ों बच्चों की मौत के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने असम में जापानी इंसेफ्लाइटिस से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए बीते रविवार को 4 सदस्यीय टीम को भेजा था। केंद्रीय अधिकारियों की टीम ने असम में टीकाकरण की स्थिति की भी समीक्षा की, जो जापानी इंसेफ्लाइटिस के मामलों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण होती है। जापानी इंसेफ्लाइटिस से उत्पन्न स्थिति की जानकारी देते हुए जोरहाट की जिला उपायुक्त रोशनी कोराती कहती है। असम जेई के लिए एक स्थानिक क्षेत्र है और यहाँ मेडिकल विभाग की तरफ से लोगों में जागरूकता पैदा करने के साथ ही टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण काम करने का प्रयास किया जा रहा है। हम इस दिशा में पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं और इस बीच जेई से मौत का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। हम मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करने, सोरों को अलग करने और मच्छरों के काटने से बचने के लिए स्कूल के बच्चों को लंबे आस्तीन के कपड़े पहनने और घर पर मच्छरदानी का उपयोग करने को कह रहे हैं ताकि इस बीमारी को रोका जा सके। ये थे जोरहाट जिला उपायुक्त रोशनी कोराती के शब्द। असम में जापानी बुखार और मलेरिया के प्रकोप का लंबा इतिहास रहा है, खासकर यहाँ बारिश के मौसम में लोग इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। सरकारी आंकड़ों पर ध्यान दें तो असम में जापानी इंसेफ्लाइटिस से साल 2013 में 134 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2014 में 165 लोगों की, 2015 में 135 लोगों की, 2016 में 92 लोगों की, 2017 में 87 लोगों की और 2018 में 94 लोगों की मौत हुई थी। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी गुवाहाटी।
राहुल गांधी अब कांग्रेस अध्यक्ष नहीं हैं। उन्होंने बुधवार को चार पन्नों की चिट्ठी सार्वजनिक करते हुए ये साफ कर दिया। राहुल ने इस चिट्ठी में लिखा कि पार्टी को फिर से बनाने के लिए कड़े फैसले लेने की जरूरत है। 2019 के चुनावों में हार के लिए कई लोगों की जवाबदेही तय करने की जरूरत है। उन्होंने लिखा कि ये अन्याय होगा कि मैं दूसरों की जवाबदेही तय करूं और खुद जवाबदेह ना रहूं। बीबीसी संवाददाता कुलदीप मिश्र ने कांग्रेस पार्टी पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा से बात की और पूछा कि अब जबकि राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है तो पार्टी का अगला कदम क्या हो सकता है।
देखिए, सार्वजनिक इसलिए किया कि ये फलसफा कहीं खत्म ही नहीं हो रहा था। उन्होंने कह दिया था कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कि मैं अपना त्याग पत्र दे रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस के बहुत से उनके साथी और बार बार उनसे आग्रह कर रहे थे कि आप बने रहिए। अब ये बात जब सार्वजनिक हो गई है तो जो बचे हुए नेतागण हैं, जो कांग्रेस पार्टी है, उसके पास अब कोई और उपाय नहीं है कि उसके अलावा कि नया नेता चुने। किस प्रक्रिया से चुनते हैं वो आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा, लेकिन जो उनका संविधान है वो ये कहता है कि जो सबसे ज्यादा वरिष्ठ जनरल सेक्रेटरी होता है वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के पद पे आसीन हो जाता है या उसका कामकाज देखता है। हो सकता है कि मोतीलाल वोरा जो है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाएं और उसमें ये बात तय हो कि अगला कदम पार्टी क्या लेने वाली है।
और उन्होंने जो चार पन्नों की चिट्ठी आज साझा की उसमें लिखा है कि हम अपने प्रतिद्वंदियों को तब तक नहीं हरा सकते जब तक हम सत्ता की चाहत न छोड़ दें और एक बड़ी विचारधारा की लड़ाई लड़ें। तो क्या समझा जाए, वो अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं को इशारा कर रहे थे?
देखिए, इशारा तो सबके लिए है, उनके अपने लिए भी है। बहुत से लोग ये भी मानते हैं और मेरी व्यक्तिगत राय भी यही है कि जब उन्होंने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया था उसके बावजूद उनपे ये दायित्व था कि अपना पद जब छोड़े, जब अपना उत्तराधिकारी मनोनीत हो जाए, उसमें सक्रिय भूमिका ना निभाते लेकिन कम से कम एक कैटलिस्ट के तरीके से वो उस प्रक्रिया को शुरू करवाते और उसको अंजाम तक पहुंचाते। अब आज के दिन जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि गांधी नेहरू परिवार का कोई भी व्यक्ति जो है वो इस नई लीडरशिप के चुनाव में सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगा। अगर सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो नया नेता चुना जाएगा वो सर्वसम्मति से चुना जाएगा और पार्टी को एकजुट रख पाएगा? ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब राहुल गांधी के पास भी होना चाहिए था, उनको भी देना चाहिए था। राजनीति में हार और जीत होती है और हार का दायित्व भी नेतागण लेते हैं, लेकिन उसमें भी एक शिष्टता होती है, एक विजडम होता है, जो कि मुझे लगा कि इस तरह से पद छोड़ के चले जाने में नहीं है।
राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद पार्टी में किस तरह की स्थिति है उस पर बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा। और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा दिल्ली से छपने वाले अखबारों के साथ हमारे साथ हैं और काफी देर से अखबारों को उलट पलट रहे हैं। दिलनवाज,
और देख यही रहा है कि राहुल गांधी ने जो कल इस्तीफा दिया है वही पहले पन्ने पर उसी तरह एक तरह के शीर्षकों से है। सभी अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। ज्यादा विस्तार से इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हम चर्चा कर चुके हैं। जनसत्ता मेरे हाथ में है जो बता रहा है बांध में दरार से बाढ़, 23 के मरने की आशंका है। मामला महाराष्ट्र का है जहां रत्नागिरी में एक बांध के टूटने की खबर है और तस्वीर प्रकाशित है जिसमें तेज बहाव पानी का देखा जा सकता है
जी।
इसके अलावा बाहुबली मुख्तार अंसारी, उनके भाई अफजाल अंसारी समेत सभी 7 आरोपियों को कृष्णानंद हत्याकांड मामले में बरी कर दिया गया है। जज बोले गवाह नहीं मुकरते तो केस का परिणाम कुछ और होता है। ये सीबीआई अदालत का फैसला कल आया है और आज अखबार में छपा है। इसके अलावा मेरे हाथ में है हिंदुस्तान जो बता रहा है दुनिया भर में व्हाट्सएप फेसबुक डाउन, और ये खबर हमने अपनी वेबसाइट पे भी की है। बहुत से लोग जो फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत परेशान रहे हैं।
भारतीय समय अनुसार आज सुबह 5 बजे के आसपास फेसबुक ने ट्वीट करके कहा है कि अब सब दिक्कतें दूर हो गई हैं।
और नवभारत टाइम्स में खबर दी है हौज काजी में अमन कायम, पटरी पर कारोबार, दिल्ली के जिस इलाके में 2 समूहों के बीच हिंसक झड़पें हुई थी। और इसी से जुड़ी एक खबर लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है, मंदिर में तोड़फोड़ मामले पर अमित शाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अमूल पटनायक को तलब किया, उनकी तस्वीर भी है संसद भवन जाते हुए। और दैनिक जागरण बता रहा है कि भारत की शीर्ष अदालतों के फैसले अब हिंदी सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे, अभी तक वेबसाइट पर ये फैसले सिर्फ अंग्रेजी में ही मिलते थे
जी।
दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ लिस्ट आई है और आर्ट्स कॉलेज जो हैं, जो कला विषय के कॉलेज हैं, उनमें अधिकतर कॉलेजों में दाखिले पूरे हो चुके हैं और पिछली बार से कट ऑफ ऊपर है, ये आज के अखबार बता रहे हैं जी। आदर्श
जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिलनवाज। और अब दुनिया जहान, डोनाल्ड ट्रंप जब जून 2018 में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मिले तो वो ऐसा करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। बीते रविवार को उन्होंने फिर इतिहास बनाया, वो उत्तर कोरिया की ज़मीन पर कदम रखने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। ट्रंप किम की मुलाकात से उत्तर कोरिया के परमाणु मुद्दे पर बातचीत बहाल होने की उम्मीद बनी है। हालांकि कई राजनीतिक विश्लेषक इसे सिर्फ राजनीतिक नाटक बता रहे हैं और किम जोंग उनकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है या फिर अमेरिका और उत्तर कोरिया के रिश्तों में एक नया मोड़ आ सकता है? हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने इस बार दुनिया जहान में यही पड़ताल की।
दुनिया जहान, तारीख थी 30 जून 2019, जगह थी उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाला DMZ यानी डीमिलिटराइज जोन। फ्लैश चमकाते और दुनिया भर में सीधी तस्वीरें भेजते कैमरे, उनका फोकस चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उन दो लोगों पर था जिनकी अचानक हुई मुलाकात पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही थी। इनमें से एक थे उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपसे यहाँ मुलाकात होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी विभाजन रेखा पार की, इसके मायने ये हैं कि वो पहले अमरीकी राष्ट्रपति हैं जो हमारी जमीन पर आए हैं।
इस अप्रत्याशित और नाटकीय मुलाकात की पहल करने वाले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उतने ही उत्साहित थे।
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरे लिए सम्मान की बात है, ये एक उम्दा दोस्ती की मिसाल है, मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ।
G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने जापान गए ट्रंप ने ट्विटर पर संदेश भेजकर किम जोंग उन को इस मुलाकात का न्योता दिया था। उत्तर कोरिया की जमीन पर कदम रखने के बाद वो किम जोंग उनके साथ दक्षिण कोरिया लौटे। ये मुलाकात सिर्फ हाथ मिलाने तक सीमित रहनी थी, लेकिन दोनों नेता जब फ्रीडम हाउस नाम की इमारत में साथ बैठे तो मीटिंग 1 घंटे तक चली। नतीजा ये रहा कि उत्तर कोरिया के परमाणु मुद्दे पर फरवरी में ठप हो गई बातचीत बहाल करने की संभावना तलाशने पर दोनों नेता तैयार हो गए। अमेरिका की कूटनीति पर करीबी नजर रखने वाले डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुग्दर खान दोनों नेताओं के हाव भाव को एक सकारात्मक संकेत की तरह देखते हैं।
डिप्लोमेटिकली ये मिलना और पॉजिटिवली इस तरह से जस्टिस करना, दोनों तरफ से ये जाहिर करता है कि दे आर ओपन टू टॉक्स और वो इतनी हॉस्टाइल नहीं है, वो एक अचीवमेंट आप कर सकते हैं। अब इतना डर नहीं है कि जंग हो सकती है।
लेकिन इस मुलाकात को लेकर हर विश्लेषक की राय इतनी सकारात्मक नहीं है। कई विश्लेषकों ने इस मुलाकात को पॉलिटिकल थिएटर यानी राजनीतिक नौटंकी बताकर खारिज करना शुरू कर दिया। ऐसी आशंकाओं का आधार भी रहा है। साल 2017 तक दुनिया ने देखा है कि ट्रंप उत्तर कोरिया के अपने इस दोस्त को खुदकुशी पर आमादा रॉकेट मैन बताते थे।
रॉकेट मैन इज ऑन अ सुसाइड मिशन फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर हिज रेजिम।
फिर अचानक नाटकीय अंदाज में ये नफरत मोहब्बत में बदलने लगी। किम जोंग उन ने बातचीत के लिए तैयार होने के संकेत दिए और ट्रंप ने बिना कोई शर्त लगाए मुलाकात की तारीख तय कर दी।
And on June 12th, in Singapore, I'll be meeting with Kim Jong-un.
सिंगापुर में हुई पहली मुलाकात में दोस्ती की बात हुई।
I was really being tough, and so was he. I would go back and forth, and then we fell in love. Okay? No, really.
लेकिन वियतनाम के हनोई में इस साल फरवरी में ये दोनों नेता दूसरी बार मिले तो दोस्ती की चूलें हिलती दिखी, बात टूटी और उत्तर कोरिया अमरीकी सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन को कोसने लगा। प्रोफेसर मुग्दर खान को सुनिए।
बातचीत आगे नहीं बढ़ने की एक वजह थी कि ट्रंप ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में वॉर मॉन्गर्स को भरा हुआ है, जॉन बोल्टन और पोम्पेयो, और जो पहले ही जो टॉक्स थी उसको डिरेल होने की वजह जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन है उन्होंने जो डिटेल्स में जो यूं कहिए कि बदमाशी की, उन्होंने इतने सख्त कंडीशन लगाए थे नॉर्थ कोरिया में, ऐसा लग रहा था कि अमरीका चाहता है कि नॉर्थ कोरिया अग्री ना हो।
परमाणु और मिसाइल परीक्षण के बाद लगे प्रतिबंधों से उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। बारिश की कमी से देश में अकाल की स्थिति है। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक उनका देश 4 दशक के सबसे भयंकर सूखे का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि उत्तर कोरिया की करीब 40% आबादी यानी करीब 1 करोड़ लोग खाने के सामान की कमी से जूझ रहे हैं। लेकिन क्या ये स्थितियां उत्तर कोरिया को झुकने पर मजबूर कर सकती हैं? इस सवाल का जवाब देते हैं दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत रह चुके शशांक।
उत्तर कोरिया की जो आम जनता है इतना कष्ट सह रही है, तो इसलिए आवश्यकता ये है कि वो आगे बढ़े। लेकिन दूसरी तरफ हमको यह भी मान के चलना है कि वो उनकी जरूरत इतनी ज्यादा नहीं कभी भी हो सकती है कि वो अपना जो उनके मिसाइल टेस्ट करने की क्षमता है उसको छोड़ दें वो विदाउट एनी प्रोग्रेस फ्रॉम द अमेरिकन साइड।
अमेरिका से बातचीत टूटने के बाद किम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के संपर्क में आए। उत्तर कोरिया ने मई में 1 हफ्ते से कम वक्त के दौरान कम दूरी वाली 2 मिसाइलों के परीक्षण किए और विश्लेषकों को लगा कि ये अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश है। कोरियाई प्रायद्वीप के घटनाक्रम पर करीबी नजर रखने वाले शशांक।
किम जोंग उन साहब की आदत रही है हमेशा से, जैसे 6-पार्टी टॉक्स भी पहले चलती थी उनकी, तो वो अलग अलग पार्टीज के कैसे डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए। जब उनको मालूम चला कि अगर ट्रंप साहब चाहते हैं कि अमेरिका के साथ में उनका जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उनका टेस्टिंग खत्म हो जाए, तो वो उसके लिए दिखाना चाहते थे कि अगर वो हम नहीं कर रहे हैं तो कम से कम शॉर्ट रेंज तो कर सकते हैं, यानी कि जो नेबरिंग कंट्रीज के हैं उनके तरफ तो वो निशान लगा सकते हैं।
मिसाइल टेस्ट पर ट्रंप की शुरुआती प्रतिक्रिया गंभीर थी, लेकिन मई में वो जापान के दौरे पर गए तो ज्यादा चिंतित नहीं दिखे। लेकिन जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने फिक्र छुपाने की कोशिश नहीं की। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कोरियन स्टडीज डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर कौशल कुमार कहते हैं कि इस क्षेत्र में चीन को छोड़कर हर देश चिंतित है।
चाइना आज भी मानता है कि अगर नॉर्थ कोरिया कुछ करेगा तो ये थ्रेट चाइना पर ना होगा, बशर्ते कि जापान और साउथ कोरिया पर।
अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान तो फिक्रमंद चीन की नीतियों को लेकर भी हैं। वहीं चीन जाहिर करता रहा है कि वो चाहता है कि कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव घटे और अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच बातचीत बहाल हो। गौरतलब ये भी है कि G20 सम्मेलन के सिर्फ 1 हफ्ते पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उत्तर कोरिया का दौरा किया।
चीन ने समय लगता है काफी पॉजिटिव रोल प्ले किया है और कोशिश करी है कि किम जोंग उन जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस दें। शी जिनपिंग का विजिट हुआ है उत्तर कोरिया का, राष्ट्रपति ट्रंप ने जब उनकी बातें हुई है ओसाका में शी जिनपिंग से, तो उन्होंने उसको पूरे तरीके से एक्सेप्ट भी कर लिया उनकी पोजिशन को।
लेकिन G20 सम्मेलन के पहले ही किम और ट्रंप के बीच पत्र भेजने का सिलसिला शुरू हो गया था। ईरान के लिए कड़ी भाषा का इस्तेमाल करने वाले ट्रंप उत्तर कोरिया के नेता पर मेहरबान दिखते थे। मुग्दर खान इसकी वजह तलाशने की कोशिश करते हैं।
ट्रंप चाहते हैं कि उनके लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट हो, एक तो एक इलेक्शन पे भी असर हो सकता है, दूसरा लोग कहते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को एक टेलीविजन शो की तरह देखता है और अगर वो पीस हो जाती है तो इट विल बी ए बिग अचीवमेंट उसके लिए।
संबंध सुधरे तो अमरीका और ट्रंप दोनों का दबदबा बढ़ेगा, लेकिन ताकत को उत्तर कोरिया की सुरक्षा की गारंटी मानने वाले किम जोंग उन क्या परमाणु हथियार हटाने के लिए सहमत होंगे? पूर्व राजनयिक शशांक जवाब देते हैं।
उत्तर कोरिया का हमेशा से ये रहा है मानना कि अमेरिका में जब जब सरकार बदलती है तो हर सरकार नया रवैया अपनाती है, तो इसलिए उनके साथ में एक ही तरह की बात करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो देखना चाहते हैं कि वाकई में राष्ट्रपति ट्रंप उनको आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं या खाली वो जो है एक समय निकाल रहे हैं।
बीते रविवार को उत्तर और दक्षिण कोरिया की सीमा पर समय का जो पल कैद हुआ है वो उम्मीद जगाता है, लेकिन ट्रंप और किम दोनों ही जानते हैं कि इसमें भरोसे के रंग भरे जाने बाकी हैं। दोनों पक्षों की असल चुनौती भी यही है।
तो दुनिया जहान आपको कैसा लगा लिखिएगा जरूर, और आपको बता दें कि इस मुलाकात के कुछ ही दिन बाद यानी कि आज ये खबर आई है कि उत्तर कोरिया ने अमेरिका पर ये आरोप लगाया है कि वो जो है लगातार जिद्दी रुख अपनाए हुए है और प्रतिबंध जो लगाए हुए हैं उन पर नरमी नहीं बरत रहा। यानी कि हाल ही में जो मुलाकात हुई दोनों देशों के प्रमुखों के बीच में उसके बाद भी तनातनी खत्म नहीं हुई है। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। मेजबान इंग्लैंड ने कल न्यूजीलैंड को 119 रन से हराकर आईसीसी विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। कल चेस्टरली स्ट्रीट में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 306 रनों का लक्ष्य था, लेकिन वो 45 ओवर में ही बहस 186 रन पर सिमट गई। न्यूजीलैंड के टॉम लैथम ने सबसे ज्यादा 57 रन बनाए। उनके अलावा कप्तान केन विलियमसन ने 27 और रॉस टेलर ने 28 रन बनाए। बाकी बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने टिकने की हिम्मत नहीं दिखाई। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने 34 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 305 रन बनाए। उसके सलामी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो और जेसन रॉय ने पहले विकेट के लिए 123 रनों की जोरदार साझेदारी की। जॉनी बेयरस्टो ने शानदार और जानदार शॉट्स लगाते हुए 99 गेंदों पर 15 चौके और 1 छक्के की मदद से 106 रन बनाए, जबकि जेसन रॉय ने 60 रन बनाए। उनके अलावा कप्तान यान मॉर्गन ने 42 और जो रूट ने 24 रन बनाए। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी और जेम्स निशम ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। कल की जीत के साथ इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और भारत भी सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। आज विश्व कप में अफगानिस्तान का सामना वेस्ट इंडीज से होगा। उधर विंबलडन में कल तीसरे दिन 22वीं वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के सदाबहार टेनिस खिलाड़ी स्टेन वावरिंका की विदाई दूसरे ही दौर में हो गई। उन्हें गैर वरीयता हासिल अमेरिका के रॉली ओपेल्का ने 5 सेट में कड़े संघर्ष के बाद 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 8-6 से हराया। लेकिन पुरुष एकल वर्ग में ही शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच दूसरे दौर में आसानी से जीत गए। उन्होंने अमेरिका के डेनिस कोडरला को 6-3, 6-2, 6-2 से हराया। उनके अलावा स्पेन के फर्नांडो वर्डास को, रूस के करेन खचानोव और कनाडा के मिलोस रोनिच भी तीसरे दौर में पहुंच गए। महिला एकल वर्ग में तीसरी वरीयता हासिल चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कुवा ने पुएर्टो रिको की मोनिका पुइंग को 6-0, 6-4 से हराया। इस्तोनिया की एनेट कोंटावेट, डेनमार्क की कैरोलिना प्लिस्कुवा, रोमानिया की सिमोना हालेप और यूक्रेन की इलीना स्वितोलिना भी तीसरे दौर में पहुँच गई है।
और अब आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र ने लीबिया की राजधानी त्रिपोली के नजदीक एक हिरासत केंद्र पर हुए हवाई हमले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। उत्तर कोरिया का कहना है कि अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के बातचीत का प्रस्ताव देने के बावजूद उत्तर कोरिया के खिलाफ उनका रुख अभी भी नर्म नहीं हुआ है। अमेरिका के ओहायो प्रांत में 6 सप्ताह से अधिक के गर्भ के गर्भपात को प्रतिबंधित करने वाले कानून पर एक फेडरल जज ने अस्थायी रोक लगा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो साल 2020 में होने वाले अमेरिकी जनगणना में नागरिकता से जुड़ा विवादित प्रश्न शामिल करेंगे। होंडुरास के अधिकारियों के मुताबिक मछली पकड़ने गई एक नौका के डूबने से कम 26 लोग मारे गए हैं, 47 लोगों को बचा लिया गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला दीपक जसरोटिया ने। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार।